और अपार वैभव का अधिपति मेरा भाई इतना बुद्धिमान विद्वान विवेकी, एक सिर्फ कषाय के वशीभूत होकर इस दुर्दशा को प्राप्त हुआ, जिसके सामने इंद्र जैसा जबरदस्त विद्याधर रत्नपुर का स्वामी परास्त हो गया था और उसने दीक्षा ले ली थी। इंद्र को किसी ने नहीं जीता था, एक रावण ने जब जीता तब उसको लगा कि क्या है संसार में। तब उसको समझ में आया कि सब कुछ पुरुषार्थ से सिद्ध नहीं हो सकता, कुछ पूर्व कर्म का भी फल जीव को भोगना पड़ता है, वरना मेरे पास क्या कमी थी, कहाँ रावण की सेना और कहाँ मेरी सेना। वो दशानन मेरे सामने कुछ नहीं लगता था, लेकिन उसका पुण्य आज प्रबल है, मुझे परास्त कर दिया। इंद्र तद्भोमुक्षगामी, तो वहां पर इंद्र जैसे विद्याधर को परास्त करने वाला विभीषण क्या कह रहा है, मेरा बड़ा भाई रावण जिसने इंद्र को परास्त कर दिया था वो आज धराशायी हो गया, एक भूमि गोचरी यानी जिसको विद्याएं नहीं आती, धरती पर चलने वाले राम लक्ष्मण ये तो विमानों में चलने वाले विद्याधर थे, तो एक भूमि गोचरी अयोध्या के राजा का पुत्र मेरे भाई का नाशक बन गया। बहुत उसको निराशा होती है और फिर उसको भाई के जब गुण स्मरण में आते हैं कि देखो आज तो मेरा भाई सीता में आसक्त होकर इस प्रकार दुर्दशा को प्राप्त हो गया, लेकिन किसी जमाने में मेरे भाई ने ही कुंभकर्ण को डांटा था कि तुम फलान नगर को जीत करके आए हो, लेकिन वहां की रानियों को तुमने कैदी क्यों बनाया, उन रानियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, अरे कायर क्या क्षत्रिय की वीरता इसी में है कि स्त्रियों पर अपना पराक्रम दिखाए, क्षमा मांग करके छोड़ दे उनको। तब कुंभकर्ण ने उनको छोड़ दिया था। और फिर एक वो दिन था जब नलकुबर नामक विद्याधर की पत्नी रावण के पराक्रम और रावण के रूप आदि को देख करके मोहित हुई, तब रावण ने उसको संबोधन दिया कि नारी का धर्म शील है, एक बार जिसको उसने जीवन में अंगीकार कर लिया उसके बाद संसार में बाकी सब पुरुष उसके लिए पर पुरुष होते हैं, इसलिए तुम इस अनीति का मार्ग छोड़ दो। मेरा भाई जिसने नीति का मार्ग दूसरों को सिखाया था वो स्वयं अशुभ कर्म के उदय से ऐसा मोहित हो गया कि आज धराशायी हो गया, धिक्कार है इस संसार को। ऐसा विचार करते करते कटार निकाल कर वो एकदम अपघात करने को तैयार हो जाता है, उसी समय सुग्रीव भामंडल आदि उसको पकड़ लेते हैं और ये कथा सुनाते हैं कि विभीषण रावण तुम्हारा भाई दशानन लंकेश उसने कभी भी युद्ध के मैदान में किसी को पीछ नहीं दिखाई, इसलिए उसका मरण युद्ध नीति के अनुसार वीर मरण है। जो वीर मरण को प्राप्त हुआ है उसका शोक करके तुम क्यों अपना प्राणांत करना चाहते हो, तुम्हारे भाई की दशा उस राजा के समान तो नहीं हुई जो मरकर गंदे स्थान का कीड़ा बन गया था। ऐसा कुछ समझा समझा करके फिर विभीषण को शांत करते हैं और फिर आगे वो कथा और आगे बढ़ती है, लंबी कहानी है राम कथा की। तो पेख मोहस्य महापम, देखो मोह की महिमा को देखो, आचार्य कहते हैं कि ये है मोह की महिमा। फिर इसके आगे की दो गाथाओं में तो बहुत भयंकर कथा है, 18 नातों की कथा इस जैसी कोई दूसरी कथा नहीं है, न अपने शास्त्रों में न कहीं संसार में दूसरी जगह ऐसी कथा मिलना मुश्किल है। तो इसमें क्या कहते हैं, एक जीव से एक प्राणिनः एकस्मिन् नैव भवे, एक जीव का एक प्राणी का एक ही जन्म में एते पूर्वोक्ता संबंधा भ्रातृ पुत्रादि रूपेण संयोगा भवन्ति जायन्ते, भाई बेटा आदि सारे प्रकार के रिश्ते एक जन्म में बन जाते हैं एक जीव के। देखिए वे कौन से रिश्ते हैं, बोले पुत्र तनुज बेटा, भ्रात्रा भ्राता बांधवो, भाई यानी बांधव, जात अभूत, सोपि च भ्राता देवर, वो भाई देवर बन जाता है, माता जननी सपत्नी, माँ जो है वो सौतन बन जाती है, भर्तृ भाई या भार्या भवंती, भाई की पत्नी बन जाती है। बड़े विचित्र रिश्ते बन जाते हैं संसार में। बोले जो धर्म से रहित हैं उन जीवों के एक जन्म में जब ऐसे 18 रिश्ते बन जाते हैं तो फिर आगामी जन्मों में उनकी क्या गति होगी, क्या बोले इसके बारे में। एक जन्म में ही 18 रिश्ते हो गए तो फिर आगे के जन्मों में क्या परिणाम निकलेगा। तो इसका दृष्टांत बतला रहे हैं। वसंत तिलकाया वेश्याया धनदेवस्य कमलायाश्च एते पूर्वोक्ता दृष्टांतः। अब यहाँ पर ये जो कथा है ये वसंत तिलका नाम की कोई वेश्या है उसकी कथा, और उसकी जुड़वा संतान हुई थी धनदेव और कमला, उनकी कथा है। उक्तं च कहा भी है मालव देश उज्जैन्यान राजा वृषभसेन। मालव देश जिसको आजकल मालवा प्रांत बोलते हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर उज्जैन वगैरह जहाँ पर है, तो वहाँ पर उज्जैनी नाम की एक नगरी, उसमें राजा विश्वसेन था, श्रेष्ठी सुदत्त और सेठ सुदत्त था, षोडश कोटि द्रव्य स्वामी 16 करोड़ संपत्ति का मालिक। वसंत तिलका वेश्या, वसंत तिलका नाम की वेश्या थी, सा सुदत्तेन गृहवासे धृता। तो सुदत्त सेठ ने उसको अपने घर पर धारण कर लिया। सा गर्भिणी सती, अब वो जब गर्भिणी हुई तब कंडू काश श्वास आदि रोगाक्रांता तेन त्यक्ता। अब वो जब गर्भवती हो गई तो उसको कंडू यानि खुजली हो गई, काश यानि खांसी हो गई, और श्वास यानि श्वास संबंधी बीमारी हो गई, और आदि माने और भी ऐसे कई प्रकार के रोग से आक्रांत हो गई वो। तो तेन उस सुदत्त सेठ ने उसको त्यक्ता छोड़ दिया, निकाल दिया बाहर। स्वगृह सा वसंत तिलका बाल युगलम पुत्रम पुत्रीम प्रसूता। अपने घर जा कर के उस वसंत तिलका ने दो बच्चों को जन्म दिया, जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी। उद्विग्नया रत्न कम्बलेन आवृत्य। अब वो परेशान थी कि इतने बड़े संपत्तिशाली सेठ ने मेरा त्याग कर दिया, तो अब सेठ के इन बच्चों को मैं क्या करूं, मेरे किन किस काम के हैं। इस प्रकार वो परेशान होकर रत्न कम्बलेन आवृत्य मखमल से ढाक कर दक्षिण दिशित प्रतोल्याम सा कमला पुत्री मुक्ता। तो दक्षिण दिशा में जो प्रतोली थी, नगर के जो चार मुख्य द्वार होते हैं ना उनको प्रतोली बोलते हैं, तो दक्षिण दिशा में जो नगर का द्वार था उज्जैनी नगरी का, वहाँ जा कर के उसने उसको उसी कंबल में लिपटे हुए त्यक्ता छोड़ दिया। कमला नाम था उस बेटी का, उसने छोड़ दिया उसको। फिर प्रयागवासी सुकेतु सार्थवाहिन सुप्रभा प्रियायाह दत्ता। और प्रयाग यानि आजकल जिसको इलाहाबाद बोलते हैं, वहाँ के निवासी किसी सार्थवाह सुभद्र जिसका नाम है सुकेतु नामक किसी सार्थवाह ने उस बच्ची को उठाया और अपनी सुप्रभा नाम की प्रिया यानि पत्नी को दत्ता प्रदान कर दिया। तथैव उसी तरह उसने वेश्या ने अपने उस लड़के का क्या किया, उत्तर दिशि प्रतोल्याम पुत्रो धनदेवो मुक्तः सन। उत्तर दिशा में जो प्रतोली माने नगर का द्वार था वहां पर धनदेवो मुक्त धनदेव नाम के बच्चे को छोड़ दिया सन। अब वो फिर आगे क्या होता है, साकेत पुरस्त सुभद्रेण सुव्रताया दत्त। तो साकेत यानी अयोध्या नगरी के किसी सुभद्र नाम के व्यक्ति ने वो उठाया बच्चे को और सुव्रताया दत्त, सुव्रता नाम की किसी स्त्री को दिया, हो सकता है इसी की पत्नी रही हो। पूर्वो भारचित पापात, पिछले कमाए हुए पाप के कारण, उस पाप का भी वर्णन बतलाएंगे आगे चल करके, कोई अवधिक ज्ञानी मुनि बताएंगे कि तुम्हारा ऐसा सब क्यों हुआ, इतने रिश्ते कैसे बन गए तुम्हारे, कौन सा तुमने कर्म किया था उस जन्म में। तो क्या हुआ कि पूर्वकालीन पाप के उदय से तयोः धनदेव कमलयोः दाम्पतित्वं जातम्, इन दोनों की शादी हो गई। पूर्व कर्म के उदय से ये जुड़वा भाई बहन की शादी हो गई धनदेव और कमला। धनदेव उज्जैन्यां व्यापारार्थं गतः। धनदेव जो था वो उज्जैनी नगरी में व्यापार करने के लिए चला गया। तया वसंत तिलकया वेश्या सहलुब्ध। अब उस वसंत तिलका नाम की जो वेश्या थी वहां, उससे वो लुब्ध हो गया, लुभा गया। ततस्तयोर वरुण नामा बाल हो जाता। फिर इनका समागम हो गया तो फिर एक बच्चा हुआ, उसका नाम था वरुण। कमलया श्री मुनिदत्त पृष्ठ है। फिर कमला ने, जो उसकी पत्नी थी, उसने एक मुनिदत्त नाम के साधु से पूछा। तीन मुनिदत्तेन सर्व संबंध कथित। उन मुनिदत्त नाम के मुनिराज ने सारा संबंध कह दिया। कथन तत्, वो कैसा था संबंध? तो बोले, उज्जैन्याम विप्र सोम शर्मा। उज्जैनी नगरी में, इसी उज्जैनी नगरी में जहाँ ये सारी घटना घटित हो रही है, बोले एक ब्राह्मण था, उसका नाम सोम शर्मा था। भार्या काश्यपी, पत्नी का नाम काश्यपी था। सावधानी से सुनते जाना, क्योंकि कथा में क्या नाम का ध्यान रखना जरूरी होता है। सोम शर्मा ब्राह्मण की पत्नी का नाम काश्यपी था। तयोः पुत्रौ अग्निभूति सोमभूति नामानौ। अब उनके दो बेटे थे, अग्निभूति और सोमभूति, इन नामों वाले। द्वावपि बहिः पठित्वा आगच्छद्भ्याम। दोनों ही बाहर कहीं पढ़ने गए उज्जैनी से, और वापस जब आ रहे थे तब उन्होंने आते समय जिनदत्त पुत्र मुने ही मातरम जिनमत्यार्य काम शरीर समाधानम पृच्छन्ती आलोक्य। क्या हुआ कि उनने दो मुनियों को और दो आर्यिकाओं को देखा। ये दोनों जब लौट रहे थे तो क्या हुआ, एक जिनदत्त नाम के मुनि थे और उनकी माँ जो थी उनका नाम जिनमती आर्यिका। मतलब पहले रिश्ते में लोग माँ बेटे थे, और अब दीक्षा लेकर के बेटा तो जिनदत्त मुनि नाम से विख्यात हो गया, और माँ जो थी वो जिनमती आर्यिका हो गई। तो जिनमती आर्यिका ने उन मुनि से शरीर समाधानम पृच्छन्तीम पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। मतलब आर्यिका मुनिराज से प्रश्न पूछ रही है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, और वो दो जो थे ब्राह्मण पुत्र अग्निभूति और सोमभूति, वो बाहर से पढ़कर वापस घर लौट रहे थे उज्जैनी, तो इन्होंने उस दृश्य को देखा। और फिर दूसरा दृश्य क्या देखा, जिन भद्र श्वसुर मुनेश्च वधूटिका सुभद्रार्यिकाम शरीर समाधानम पृच्छन्तीम आलोक्य। और फिर जिनभद्र नाम के एक मुनि थे, दूसरे मुनि जो थे ना, जिनभद्र नाम था उनका, और वो पूर्व रिश्ते की अपेक्षा से वो जो दूसरी आर्यिका थी उसके ससुर लगते थे, और वो वधू थी। तो वो जो आर्यिका थी, वधू आर्यिका, वो इनसे पूछ रही थी कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। यानी जो आर्यिका माँ थी वो अपने पुत्र जो मुनि थे उनसे पूछ रही थी कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, और जो बहू थी वो अपने ससुर जो मुनि बन गए थे उनसे पूछ रही थी कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो आलोक्य, इस घटना को आलोक्य ने देख करके द्वाभ्याम भ्रातृभ्याम उपहास्यम कृतम, दोनों ने हंसी उड़ाई। क्या हंसी उड़ाई? तरुणस्य वृद्धा वृद्धस्य तरुणी धात्रा विपरीतम कृतम। बोले ब्रह्मा ने बड़ा उल्टा संबंध बनाया। बोले कैसा? कि जवान साधु का बुढ़िया के साथ, और जवान साध्वी का बूढ़े के साथ संबंध बना दिया ब्रह्मा ने। इस प्रकार हंसी उड़ाई उनने। तयो उपार्जित कर्म वशात तथोपार्जित, उस प्रकार से उपार्जित जो कर्म था उसके प्रभाव से कालेन मरण को प्राप्त होकर अत्र उज्जैन्याम, इसी उज्जैनी में सोम शर्मा मृत्वा वसंत सेना सुता वसंत तिलका जाता। सोम शर्मा जो था वो मरकर वहां पर कोई वेश्या रही होगी, सोम सेना उसकी बेटी बन गया, माने पुरुष स्त्री पर्याय में आ गया, और वो वसंत तिलका नाम की वेश्या बन जाता है सोम शर्मा। और अग्निभूति सोमभूति द्वंद्वम, और ये दोनों भाई मृत्वा मर करके तस्या शिशु युग्मम कमला धनदेव पुत्र पुत्री युग्मम यथा संख्यम जातम। ये दोनों जो थे अग्निभूति और सोमभूति, ये मर करके उस वेश्या के जुड़वा बच्चे बनते हैं। कमला और धनदेव। काश्यपी त्वरी वरुण शिशुत्वम प्राप्ता, और काश्यपी नाम की जो इनकी पत्नी थी ब्राह्मण की, किसकी, सोम शर्मा की जो पत्नी थी, वो आकर के आगे चलकर भविष्य में उसी वसंत तिलका के गर्भ से धनदेव के संयोग से वरुण नाम का बेटा बन जाती है। अब ये कौन बता रहे हैं, मुनिराज उसको बता रहे हैं कमला को। सर्वमेद छ्रुत्वा जाति स्मरी भूत्वा अणुव्रतम लात्वा उज्जयिनी गत्वा वसंत तिलका गृहम प्रविश्य पालनस्थम वरुण मांदोलयति। अब ये सारी कथा सुन करके उसको जाति स्मरण हो गया, किसको, कमला को। और जाति स्मरी भूत्वा, जाति स्मरण युक्त होकर अणुव्रतम लात्वा अणुव्रत ग्रहण कर लेती है। अणुव्रत ग्रहण करने का मतलब पांचवा अणुव्रत ग्रहण कर लेती है। फिर उज्जैनी गत्वा वहां जाती है शहर में, उज्जैनी नगरी में, वसंत तिलका गृहम प्रविश्य और उस वेश्या के घर में प्रवेश करके पालनस्थम वरुण आंदोलयती। वो पालने में झूलने वाला जो वरुण था बालक, जो इसका पिछले जन्म में माँ का जीव था, उसको झुलाने लग जाती है। और झूला झुलाते हुए फिर क्या करती है, उक्तम च एक अपभ्रंश भाषा में एक गाथा गाती है, यानी जो लोरी सुनाते हैं ना, उस प्रकार से वो गाती है। बालयणि सुन सुवयणम तुझ सरिसाहि अठदह नत्ता उत्तु भतिज्जौ भायौ देवरु पित्तियौ ओत्तज्जु। अब वो रिश्ते बता रही है लोरी गाते हुए कि देख बेटे तेरे कितने रिश्ते हैं मेरे साथ, सुन कैसे, देखिए। मम भर्तुः पुत्रत्वात् तं पुत्रः, मेरे पति का बेटा होने के कारण तू मेरा बेटा हुआ, क्योंकि पति का बेटा बेटा ही होता है। फिर धनदेव भ्रातुः पुत्रत्वात् तं बालो भ्रातृव्यः, और मेरा जो पति है वो मेरा भाई ही है, इसलिए भाई का लड़का होने के कारण तू भतीजा हो गया। फिर त्वन मद एकमातृत्वात्तम मम भ्राता, तेरी माँ और मेरी माँ एक है, इसलिए तू मेरा भाई है। फिर धनदेवस्य लघु भ्रातृत्वात् त्वं मम देवरः, और मेरा जो पति है धनदेव उसका तू छोटा भाई हुआ, इसलिए मेरा देवर है। धनदेवो मम तातः तद्भ्राता त्वं तेन मे पितृव्यः, और धनदेव जो है वो चूंकि मेरी माँ के साथ पति जैसे संबंध को प्राप्त हुआ है, इसलिए मेरे लिए पिता के समान हो गया, और मेरा पिता होने के कारण धनदेव का तू पुत्र हुआ, नहीं धनदेव का तू भाई है, तो मेरे पिता का भाई होने के कारण मैं पितृव्य, मेरा चाचा है, चाचा बोलो काका बोलो। अहम वेश्या सपत्नी, और बोले कि चूंकि मेरे पति ने उसके साथ पत्नी जैसा संबंध रखा तो मैं सौत हो गई, सौतन। तेन धनदेवो मत पुत्र, इसलिए मेरी सौत का बेटा धनदेव होने के कारण मेरा बेटा हो गया। तस्यापि त्वं पुत्रः, और मेरे बेटे का बेटा होने के कारण तस्मान् मम पौत्रस्त्वम्, इसलिए तू मेरा पोता है। इति शिशुना सह संबंध, इस प्रकार उस बच्चे के साथ उसने अपने रिश्ते बताए। फिर देखिए दूसरे लोरी क्या गाती है दूसरी, तुह पियरो मह पियरो पिया महो तह य हवई भत्तारो भायौ तह विय पुत्तो ससुरो हवई स बालया मज्झ। धनदेवो वसंत तिलका भर्तृत्वात् मम पिता, धनदेव जो है वो वसंत तिलका के साथ पति के संबंध को प्राप्त होने के कारण मम पिता, मेरा पिता हो गया, क्योंकि मैं वसंत तिलका की बेटी हूं। फिर त्वम मम पितृव्यस तवापि स धनदेव तातस तातत्वात् मे पितामह, और तू मेरा पितृव्य यानी चाचा है और धनदेव तेरा पिता है, इसलिए चाचा का पिता दादा हो गया, मेरा दादा हो गया तू। फिर तथा मम सोपि भर्ता, फिर वो मेरा पति भी है धनदेव। एक मातृत्वात् सच मम भ्राता, और एक माँ होने के कारण वह धनदेव मेरा भाई है। अहम वेश्याया सपत्नी, मैं उस वेश्या की सौतन हूँ। सच तस्या वेश्याया पुत्रत्वात्, और वो उस वेश्या का बेटा होने के कारण ममापि पुत्र, मेरा भी बेटा हुआ। वेश्या में श्वश्रु, और वेश्या मेरी सास हुई। अहं तस्या वधु, मैं उसकी वधु हो गई। धनदेवो वेश्या भर्तृत्वात् मदीय श्वसुर, और धनदेव जो है वो वेश्या का पति होने के कारण मेरा ससुर हो गया। वेश्या मेरी सासू कैसे हो गई? वही जो ऊपर रिश्ते बताया ना, उसमें ये गणित फिट हो जाएगा कहीं। इति इस प्रकार धनदेव से, धनदेव ने सह संबंध, धनदेव से मेरे ये छह रिश्ते हो गए, तेरे साथ छह और धनदेव के साथ छह। फिर आगे कहते हैं अगली लोरी में, भाव जामितुमं वा पिया मही तहय मायरी सवई हवई वहूत सासु एक हिया अठ दहनाता नत्ता तव भ्रातृ भार्यात्वात् मम भ्रातृजाया। तेरे भाई की पत्नी होने के कारण मम भ्रातृजाया, नहीं तुझ भाई की पत्नी होने के कारण मम भ्रातृजाया, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो वो भ्रातृ माने तेरे भाई, तेरे भाई यानी धनदेव, वो बच्चा वरुण है ना, उसका भाई धनदेव हुआ, तो धनदेव की पत्नी के होने, पत्नी होने के कारण मैं तेरी भौजाई हूं, भाई की पत्नी। तव मम च धनदेव पिता, तेरा और मेरा दोनों का पिता धनदेव है। क्यों? क्योंकि मैं वेश्या की बेटी हूं और फिर धनदेव जो है वेश्या के साथ पति के समान संबंध रखने वाला है, इसलिए माँ के साथ जो पति जैसा संबंध रखने वाला वो मेरा पिता हो गया। तो तेरा और मेरा दोनों का धनदेव पिता है। तस्यापि वेश्या माता, और उस धनदेव की माँ वेश्या है। तेन मे पितामही, इसलिए वो मेरी दादी हो गई। धनदेवस्य तवापि सा मातृत्वात् ममापि माता, धनदेव की और तेरी माँ होने के कारण वो मेरी भी माँ है। मद भर्तृभार्यात्वात् सा मे सपत्नी, और मेरे पति की पत्नी होने के कारण वह मेरी सौतन है। धनदेवो मत सपत्नी पुत्रत्वात् ममापि पुत्रस, और धनदेव मेरी सौत का बेटा होने के कारण मेरा भी बेटा हुआ। तद भार्यात्वात्, और उसकी पत्नी होने के कारण मदीया सा वेश्या, मेरे लिए वो जो वेश्या है वो वधू है, यानी बहू हो गई। कहाँ से कहाँ, कितना कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता है, भयंकर है। और अब आखिरी रिश्ता बता रहे 18वां। अहम धनदेव भार्या, मैं धनदेव की पत्नी हूँ। तस् सा माता, और वो धनदेव की माँ है। तेन में श्वश्रु हूँ, इसलिए मेरी सासू हो गई। एतत् श्रुत्वा, ये सब सुन करके, मतलब उसने लोरी गाई और वो लोरी वहां पर उन लोगों ने भी सुन ली, बाकी लोगों ने। तो एतत् श्रुत्वा, इसको सुनकर वेश्या धनदेव कमला वरुणादय ज्ञात वृत्तांत, ये सब सुनकर के वेश्या धनदेव कमला और वरुण आदि सब जान लिया है अपना कथानक, जिन्होंने ऐसे जाति स्मरी भूता, जाति स्मरण को प्राप्त होकर प्रतिबुद्धा जागृत हो गए, तपोगृहीत्वा दीक्षा लेकर स्वर्गं गता, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इति धनदेवादि दृष्टांत कथा, इस प्रकार धनदेवादि की दृष्टांत कथा है। फिर संसार में जीव पांच प्रकार से भटकता है, उसका उल्लेख। संसारो पंच विहू, दव्वे खेते तहेव कालेय भव भ्रमणो य चौथो पंचमो भाव संसारो। द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार, बड़ी बारह भावना, द्रव्य क्षेत्र रूप काल भाव भव परिवर्तन करता है, इसको परिवर्तन भी कहते हैं। फिर द्रव्य स्वरूप बताया द्रव्य संसार का, द्रव्य परिवर्तन क्या है, तो बंधदि मुंचदि जीव पटिसमयं कम्म पुग्गला विविहा नो कम्म पुग्गला विय मिच्छत्त कसाय संजुत्तु। एक जीव प्रति समय कर्म पुद्गलों का बंध बांधता है, अनेक प्रकार के कर्म पुद्गल हैं, ज्ञानावरण के अलग होते हैं, मोहनी के अलग होते हैं, तो ये कार्मण वर्गणा में भी कुछ अलग अलग विभाजन होता है, क्योंकि सब परमाणु किसी भी कर्म के रूप में नहीं बदल सकते। मोहनी रूप परिणत होने वाले कार्मण वर्गणा के परमाणु कुछ स्पेसिफिक है, अलग प्रकार के हैं। कार्मण वर्गणा एक वर्गणा है, वो मोहनी की हो या किसी की भी हो, जाति उसकी कार्मण वर्गणा है, लेकिन मोहनी रूप बदलने वाले परमाणु अलग होंगे, ज्ञानावरण आदि रूप होने वाले अलग होते हैं। तो विविहा लिखा है यहाँ पर, कम पुगला विविध प्रकार के कर्म पुद्गल यानी कार्मण वर्गणा को पड़ी समय जीवो बंधदि मुंचदि, प्रति समय जीव ग्रहण करता है छोड़ता है, लेकिन उसी वर्गणा को ग्रहण करके छोड़ने में उसको कुछ काल अपेक्षित है। अभी जैसे कर्म बांधा, उसको अगले समय में नहीं झड़ा सकता हूं, उसके लिए एक निर्धारित काल अपेक्षित है, कम से कम उतना काल बीतने के बाद में फिर कर सकते हैं। आबादा कह लो, अविपाक निर्जरा से भी कभी निकाल दे वो, तो भी उसके लिए काल तो लगेगा। और नौकर्म पुद्गला भी है, और नौकर्म संबंधी पुद्गलों को भी ग्रहण कर करके छोड़ता है, लेकिन नौकर्म में इतनी विशेषता है कि नौकर्म परमाणुओं को ग्रहण करके वो अगले समय में भी झड़ा सकता है। और इसका दृष्टांत मोटे तौर पर तो यही दिया था कि कोई पीपल का पेड़ है, अग्नि में भस्म हो जाता है, और भस्म होकर के उसके परमाणु धुआं, राख, कोयला आदि रूप बदल करके प्रकृति में बिखर जाते हैं, फिर कालांतर में कई उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आदि बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद कभी कदाचित उन्हीं परमाणुओं से वैसा ही वृक्ष वहां पर खड़ा हो जाए। बीच में कई बार उनमें से कुछ परमाणु आएंगे और फिर वृक्ष के रूप में बदलेंगे वहां, लेकिन नहीं, जब वे ही परमाणु पूरे के पूरे आकर के वैसे ही वृक्ष के रूप में परिणत हो जाए, तब समझ लो एक पुद्गल परिवर्तन, नौकर्म पुद्गल परिवर्तन। उसी प्रकार कर्म परमाणुओं संबंधी भी ऐसे ही है कि अभी जो अपने पास कर्म परमाणु है वो झड़ गया, फिर युगों युगों तक कई उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कल्प कालों के बीतने पर, असंख्यात समय बीत जाने पर, फिर उन्हीं परमाणुओं से वैसे ही कर्म रूप पर्याय प्रकट हो जाए, तो फिर वो कर्म पुद्गल परिवर्तन है। एक बार जीव को सम्यक दर्शन हो जाने पर वो आधे पुद्गल परिवर्तन से अधिक संसार में भ्रमण नहीं करता। आधे पुद्गल परिवर्तन का काल इतना लंबा है कि उसमें नियम से अनंत भव होते हैं, नियम से, उससे कम नहीं, तो भी एक आश्वासन तो है। अब जिसको कभी नहीं प्राप्त हुआ सम्यक दर्शन, उसका तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन जिसको हो गया उसके लिए तो एक बात हो गई कि भाई बहुत वेटिंग लिस्ट में आ गया नाम तुम्हारा यानी अब तुम्हें नियम से अर्धपुद्गल परिवर्तन काल के भीतर संसार से पार होना, ये तो एक गारंटी हो गई, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टियों का तो कोई ठिकाना नहीं है। अब केवली भगवान के ज्ञान में जो है सो है, वो एक अलग जगह है अपनी, लेकिन अपने हिसाब से तो कुछ अपन समझ नहीं सकते। तो बहुत बड़ा काल होता है पुद्गल परिवर्तन का, ऐसे कितने पुद्गल परिवर्तन किए हैं जीव ने, तो उसमें बताया कि जो जीव कभी भी सम्यक को प्राप्त नहीं होता, अनादिकाल से जो परिवर्तन करता चला आया है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन तो होते ही हैं, और एक आधे पुद्गल परिवर्तन में जब अनंत भव होते हैं तो पूरे पुद्गल परिवर्तन में अनंतानंत, और असंख्यात में फिर और उसका गुना कर दो, तो कितने भव हो जाते हैं कोई हिसाब ही नहीं, कोई सीमा नहीं। कोई छोर नहीं है। अगर आप कहोगे नहीं पीछे काल की शुरुआत इस पॉइंट से हुई है, तो उसके पहले क्या था ये प्रश्न ही बतलाता है। पहले, पहले का मतलब काल, आ रहा समझ? उसके पहले क्या था? एक समय पहले, एक समय आ गया, काल आ गया। काल कहीं से शुरू नहीं होता, और उसी प्रकार छहों द्रव्य अनादि निधन है। जिस प्रकार काल की कोई शुरुआत और अंत नहीं, उसी प्रकार जीव की भी कोई शुरुआत और अंत नहीं है। पर्याय अवस्थाएं साधी शांत होती है, यानी उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है, लेकिन पदार्थ का कभी भी समापन या नाश नहीं हो सकता। परमानेंसी विथ चेंज बोलते हैं इसको, जीव को परमानेंट है लेकिन फिर भी विथ चेंज, बदलाव के साथ परमानेंट है। यानी उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा,